SBS हिंदी सेवा के सभी श्रोताओं को नई दिल्ली से मनन कुमार का नमस्कार। पेश हैं भारत के समाचार। भारत की यूएनएससी यानी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में दावेदारी को अमेरिका, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम और रूस सहित कई देशों का समर्थन मिलने से बल मिला है। इन देशों ने भारत के अलावा ब्राजील, जापान और जर्मनी को भी सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनाने की वकालत की है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र की जनरल असेंबली में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ द्वारा भारत अधिकृत कश्मीर में दमन की नीति का आरोप लगाए जाने के बाद कड़ी प्रतिक्रिया दी है। भारत की ओर से प्रथम सचिव भाविका मंगल नंदन ने वैश्विक आतंकवाद में पाकिस्तान की मिलीभगत का आरोप लगाते हुए कहा कि पाकिस्तान सीमापार आतंकवाद का लंबे समय से समर्थन करता आ रहा है, जिसके लिए उसे अनिवार्य रूप से परिणाम भुगतने होंगे।
There can be no compact with terrorism. In fact, Pakistan should realize that cross-border terrorism against India will inevitably invite consequences. It is ridiculous that a nation that committed genocide in 1971 and which persecutes its minorities relentlessly even now, dare speak about intolerances and phobias. The world can see for itself what Pakistan really is.
इसके पहले श्री शरीफ ने अपने संबोधन में कहा था कि कब्जे वाले कश्मीर में भारत की क्रूर जबरदस्ती और दमन की नीति ने यह सुनिश्चित किया है कि बुरहान वानी की विरासत लाखों कश्मीरियों के संघर्ष और बलिदान को प्रेरित करती रहे। अपने महान संघर्ष से प्रेरित होकर वे विद्रोही बने हुए हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी अपने संबोधन में पाकिस्तान पर गंभीर आरोप लगाते हुए चेतावनी दी। श्री जयशंकर ने गजा और यूक्रेन में जारी संघर्ष को खत्म करने के लिए भी संयुक्त राष्ट्र के पटल से आवाज उठाई।
That peace and development go hand in hand. Yet, when challenges to one have emerged, due regard has not been given to the other. Clearly, their economic implications for the weak and vulnerable need to be highlighted. But we must also recognize that conflicts themselves must be resolved. The world cannot be fatalistic about the continuation of violence on a large scale, no more than be impervious to its broader consequences. Whether it is the war in Ukraine or the conflict in Gaza, the international community seeks urgent solutions. These sentiments must be acknowledged and acted upon.
Haryana Vidhan Sabha chunavon mein ab keval 5 din shesh hain और चुनाव अभियान जोरों पर है। अपनी अमेरिका यात्रा के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी चुनाव प्रचार में कूद गए हैं। हिसार के बरवाला विधानसभा क्षेत्र में उन्होंने अपनी अमेरिका यात्रा के दौरान मिले हरियाणा नौजवानों की व्यथा बताते हुए मोदी सरकार पर हमला किया।
मैंने उनसे पूछा, भाई एक बात बताओ, यहां से आप अमेरिका गए कितने पैसे लगे? कहते हैं 35 और 50 लाख के बीच में लगते हैं। मैंने उनसे पूछा, भैया अगर आपके पास 35 लाख रुपया है तो आपने हरियाणा में बिजनेस क्यों नहीं खोला, छोटी सी दुकान क्यों नहीं चलाई? कहते राहुल जी, हरियाणा में आज 35 लाख 50 लाख के साथ भी बिजनेस नहीं खोला जा सकता है। हरियाणा में सिर्फ बेरोजगारी है और महंगाई है। यहां पे अगर कोई युवा सपना देखना चाहता है तो सिर्फ अमेरिका का सपना देख सकता है, कोई सपना बचा ही नहीं। मैंने उनसे पूछा, भैया बताओ ये 35 लाख 50 लाख रुपए आपने लिए कहां से लिए? आधों ने कहा, राहुल जी हमने अपनी जमीन बेची। दूसरों ने कहा, हमने कर्जा लिया। किस रेट पे कर्जा लिया? 2% महीने का, 24% हरियाणा के युवाओं के लिए बैंक के दरवाजे बंद, छोटे दुकानदारों के लिए, स्मॉल एंड मीडियम मैन्युफैक्चरर्स के लिए बैंक के दरवाजे बंद, अदानी के लिए बैंक का दरवाजा खुला।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के राखीगढ़ी क्षेत्र की चुनावी सभा में कांग्रेस को सांप्रदायिक, धोखेबाज और कई अन्य उपनामों से संबोधित करते हुए हमला बोला।
भारत में आज अगर सबसे बड़ा सांप्रदायिक दल कोई है तो वो सांप्रदायिक दल भी कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस की सांप्रदायिकता की सजा हरियाणा भी भुगत रहा है। कांग्रेस तुष्टिकरण के लिए ऐसी मानसिकता को बढ़ावा दे रही है जिससे हमारी बहन बेटियों पर हमले हो रहे हैं। आपने कांग्रेस के विधायक की धमकी जरूर सुनी होगी, वो कहता है कि कांग्रेस जीती तो लोगों को अपना घर बार छोड़ना होगा। अभी ये आलम है, सत्ता तो मिली नहीं है, मिलने की संभावनाएं नहीं है, लेकिन जनता को पर जुल्म करने की बातें कर रहे हैं। अगर ऐसे लोगों को सत्ता मिल गई तो क्या होगा, ये सोच करके भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं।
कर्नाटक की कांग्रेस सरकार के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के खिलाफ कथित मैसूर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी जमीन घोटाले में विशेष अदालत से कर्नाटक लोकायुक्त द्वारा जांच के आदेश के बाद निष्पक्ष जांच के लिए कर्नाटक उच्च न्यायालय से इस केस को सीबीआई को सौंपने की मांग की गई है। श्री सिद्धारमैया पर मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा उनकी पत्नी पार्वती को 56 करोड़ रुपए की 14 साइटों का आवंटन करने के मामले में अवैधताओं का आरोप है। भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने इस अभियोग पर कांग्रेस से तीखे सवाल पूछे।
यानी जो आरोप कांग्रेस पार्टी लगाती थी, ये केस इसलिए बिल्कुल भिन्न है कि कर्नाटक में आपकी सरकार है और कर्नाटक के लोकायुक्त के द्वारा यह निर्देश आया है कि मूडा स्कैम में न सिर्फ सिद्धारमैया जी और उनका परिवार दोषी है बल्कि वो आरोपी नंबर 1 है। तो अब मैं राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी से पूछना चाहता हूं कि आप भ्रष्टाचार के आरोपी नंबर 1 के साथ खड़े हैं या नहीं।
इस बीच जन अधिकार संघर्ष परिषद नामक एक नागरिक अधिकार संस्था ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन, भाजपा प्रमुख जेपी नड्डा और कई अन्य के खिलाफ चुनावी बॉन्ड का इस्तेमाल कर जबरन वसूली का इल्जाम लगाते हुए FIR दर्ज कराई है। यह कार्यवाही जनप्रतिनिधियों की विशेष अदालत के आदेश पर की गई। इस FIR का हवाला देते हुए कांग्रेस की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने इलेक्टोरल बॉन्ड मसले पर सर्वोच्च न्यायालय की देखरेख में स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम गठित कर जांच और फौरी तौर पर केंद्रीय वित्त मंत्री के इस्तीफे की मांग की है।
First, sufficient facts, application of mind. Second, on that FIR registration, these two things have been done. Three, summoning the accused. Four, interrogating. And fifth, on the basis of clear material which is available in the public record, including from the prior Supreme Court judgment, I would say arrest. But above this, in the middle of all this, it must be preceded by some small sliver, some small little piece of moral integrity and moral responsibility, which should be resignation. It's a very small thing. And then ultimately, because of the need to have objectivity, because of the way in which every institution has been suborned by this government at the central level and wherever they are in power in the states, the need for the Supreme Court to have an absolutely independent body in the nature of an SIT to monitor it.
तो ये थे अब तक के समाचार। नमस्कार।